ॐ अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्ध जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम लोग पाठ करेंगे श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंध के 18वें अध्याय का 21 नंबर का श्लोक। श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 अध्याय 18 श्लोक 21। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या तस्य ते पादसरोरुह अर्हणम् पादसरोरुहार्हणम् निकामयेत् सा अखिल कामलंपटा तत् एव तदेव राशि इप्सितम् इप्सितः अर्चितः यत् भग्नयांचा भगवान् प्रतप्यते। यातस्य ते पादसरोरुहार्हणम् निकामयेत् साखिल कामलं पटा तदेव राशिप्सितमिप्सितोर्चितो यद भग्न यांच भगवन प्रतप्यते या जो स्त्री तस्य उसका ते आपका पाद सरोरुह चरण कमलों का अरहणम पूजा निकामयेत पूर्णतया कामना करती है सा ऐसी स्त्री अखिल कामलम पटा समस्त प्रकार की लौकिक कामनाएं करते हुए भी तत् वह एव केवल राशि आप प्रदान करते हैं इप्सितम कुछ अन्य वांछा इप्सितः वांछित अर्चितः पूजित या जिससे भग्न यांचा जो आपके चरण कमल को छोड़कर अन्य वस्तुओं की कामना करती है और इस प्रकार भग्न चित्त हो जाती है। भगवान हे ईश्वर प्रतप्यते पीड़ा को प्राप्त होती है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद, हे भगवान जो स्त्री आपके चरण कमल की आराधना विशुद्ध प्रेम बस करती है आप उसकी समस्त कामनाओं को स्वतः ही पूरा करते हैं। यदि कोई स्त्री आपके चरण कमलों की पूजा किसी विशेष प्रयोजन के लिए करती है तो भी आप उसकी कामनाओं को शीघ्र पूरा करते हैं, किंतु अंततः वह टूटे हुए मन से पश्चाताप करती है। अतः किसी भौतिक लाभ के लिए आपके चरण कमलों की आराधना नहीं की जानी चाहिए। तात्पर्य, श्रील रूप गोस्वामी ने विशुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार किया है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। मनुष्यों को चाहिए कि वे भगवान की आराधना किसी भौतिक कामना के पूर्ति के लिए न करें। भगवान के चरणारविंदों की सेवा करने का अर्थ है उन्हीं के इच्छानुकूल सेवा करना। अतः नवदीक्षित भक्त को यह आदेश दिया जाता है कि गुरु तथा शास्त्रों के द्वारा बताए गए विधि नियमों के अनुसार ही भगवान की पूजा करें। इस प्रकार से भक्ति करते हुए वह क्रमशः श्री कृष्ण में आसक्त होता है और जब उसका भगवान के प्रति मौलिक सुप्त प्रेम जागृत हो जाता है तो बिना किसी उद्देश्य के वह भगवान की सेवा करने लगता है। ऐसी अवस्था के साथ उसके संबंध की परमावस्था है। ऐसी अवस्था भगवान के साथ उसके संबंध की परमावस्था है। तब ईश्वर अयाचित ही अपने भक्त की सुख सुविधा तथा संरक्षण का ध्यान रखते हैं। भगवद गीता 9:22 में श्री कृष्ण यह वचन देते हैं, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनः परिउपासते तेषां नित्याभिजुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। परमेश्वर अपनी भक्ति में पूर्णतः संलग्न रहने वालों का स्वतः ध्यान रखते हैं। भक्त के पास जो कुछ है वे उसकी सभी प्रकार से रक्षा करते हैं और उसे जो कुछ चाहिए उसकी पूर्ति करते हैं। तो भला किसी भौतिक वस्तु के लिए भगवान को क्यों परेशान किया, ऐसी प्रार्थना वृथा है। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि यदि कोई भक्त भगवान से अपने किसी इच्छा पूर्ति की कामना करे तो भी उसे सकाम भक्त नहीं मानना चाहिए। भगवद गीता 7:16 में श्री कृष्ण ने कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर सभ। हे भरत श्रेष्ठ, विपदाग्रस्त, धन के इच्छा वाले, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी भक्ति करते हैं। जो आर्त तथा अर्थार्थी भगवान के निकट दुख से छुटकारा पाने या कुछ धन प्राप्त करने के उद्देश्य से जाते हैं, वे सकाम भक्त नहीं है। चाहे वे ऐसा प्रतीत होते हों, वे नौसिखिया भक्त होने के कारण अज्ञानी होते हैं। अन्यत्र श्री कृष्ण भगवद्गीता में कहते हैं, उदारा सर्व एवते, वे सभी उदार हैं। प्रारंभ में भले ही किसी भक्त के मन में कोई कामना रहे, किंतु कालांतर में उसका लोप हो जाता है। अतः श्रीमद् भागवत का 2-3-10 का 2-3-10 आदेश है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। व्यापक बुद्धि वाला पुरुष, चाहे वह सकाम हो या निष्काम, अथवा मोक्ष चाहने वाला, उसे सभी प्रकार से श्री भगवान की आराधना करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की भौतिक कामना हो, तो उसे श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही उसको पूर्ण करते हैं। यदि वह अपनी कामना पूर्ति के लिए किसी देवता के पास जाता है, तो उसे नष्ट बुद्धि मानना चाहिए। भगवद्गीता 7:20 में श्री कृष्ण का कथन है, कामस्तैतृहित ज्ञाना प्रपद्यन्त्यन्य देवता तम तम नियम मास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामनाओं ने जिनके ज्ञान को हर लिया है, वे ही अन्य देवताओं की शरण लेकर अपने स्वभाव के अनुरूप उपासना के विधि विधानों का पालन करते हैं। लक्ष्मी देवी उन समस्त भक्तों को, जो भगवान के पास कोई भौतिक कामना लेकर के जाते हैं, अपने अनुभव के आधार पर यही उपदेश देती हैं कि श्री भगवान कामदेव हैं, अतः उनसे किसी भौतिक वस्तु की याचना न की जाए। वे कहती हैं कि प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि बिना किसी कामना के भगवान की सेवा करे। चूंकि श्री भगवान का प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास है, अतः वे उन सब की इच्छाओं को जानते हैं, और समय आने पर वे उनकी समस्त आकांक्षाओं को पूरा भी करते हैं। अतः किसी प्रकार के वरदान प्राप्त करने की परवाह किए बिना हमें भगवान की सेवा पर पूर्ण रूपेण अवलंबित रहना चाहिए। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग लक्ष्मी देवी के उक्ति को सुन रहे हैं। लक्ष्मी देवी अकेले नहीं हैं, उनके साथ कई कुमारियां हैं। संबत्सर प्रजापति के पुत्रियां हैं, उनके साथ वे भगवान कामदेव की आराधना कर रही है। जो नियमित भागवत सुनते हैं, तो उनको पता है कि जो प्रसंग चल रहा है, तो इसमें दो तरह से अर्चना की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। मंत्र स्तुति भ्याम, मंत्र और स्तुति से। मंत्र प्रायः गद्य में दिया गया, स्तुति पद्य में दिया गया है। एक बार आप अपने स्मरण में लावें कि लक्ष्मी जी किस मंत्र का उच्चारण की, किस मंत्र को बोली। किसी को कुछ कुछ धारणा आ रहा है? पाठ भेद है, लंबा वाक्य है लेकिन कांताय कामाय नमस्ते उसका एक अंश है, कांताय कामाय नमस्ते। जो कामदेव हैं, जो हमारे कांत हैं, उनको नमस्कार है। या किसी किसी ग्रंथ में दिया गया है कामाय ने कांताय पतये नमः। वे सीधे कह रही हैं कि आप कांत हैं, प्रिय हैं और पति हैं, आपको नमस्कार है। और उनके विशेषता को कई एक शब्दों से व्यक्त किया गया है। अब उन शब्दों की व्याख्या फिर से की जाए तो हम लोग इस श्लोक की व्याख्या कुछ भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन कई एक शब्द है। एक शब्द है सर्वमयाय। भगवान ऐसे पति हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं और सब उनके अधीन है, सर्वस्वरूप है, उनसे बाहर कुछ भी नहीं है। भगवान के श्रेष्ठता को स्थापित करके और नमस्कार कर रही हैं, कह रही कांताय कामाय नमः। हे कामदेव, जो हमारे पति हैं, आपको नमस्कार है। या कहीं कहीं स्पष्ट कहा गया है कांताय पतये नमः, पति को नमस्कार है। अब पति को नमस्कार है यह शब्द सुन करके कोई कह सकता है विचित्र बात है, अरे भी जब यही पति हैं तो फिर कभी कभी हम लोग देखते हैं कि स्त्रियां भगवान की आराधना करती हैं, व्रत करती हैं और पति की इच्छा करती हैं, ये क्या बात है? जब यही पति हैं और इनकी आराधना करके और फिर पति चाहती हैं, अब ये कुछ समझ में नहीं आ रही। जब पति यही हैं तो इनकी आराधना करनी चाहिए, फिर पति की आकांक्षा क्यों करती हैं? और लक्ष्मी कह रही हैं, लक्ष्मी जी कह रही हैं कि मूर्खता बस। तो स्त्रियों पर वे आक्षेप कर रही हैं, अभी कैसे मूर्खता है इसको बतलाएंगी, तो बतला रही हैं कि स्त्रियों व्रतस्त्वा ऋषिकेश्वरम स्वतो याराध्य लोके पतिमा सासतेन्यम तासाम न ते वै परिपांत पत्यम प्रियम धनायुंस यतो स्वतंत्रता। कि हाँ, वास्तव में आप सारे इंद्रियों के स्वामी हैं, आप ईश्वर हैं, लेकिन स्त्रियां व्रत ही व्रत करके, व्रत का अनुष्ठान करके याराध्य लोके पतिमा सा सतिन्यम, ऐसा लोक में देखा जाता है कि व्रत से आपकी आराधना करती हैं, व्रत ही। लेकिन लक्ष्मी जी कह रहे हैं कि आपकी आराधना करती हैं व्रत से, तो ऐसा शास्त्रों में विधान है कि पति की प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। ओ, कि वे आपकी आराधना करती हैं और अन्यम पतिम आशासते, दूसरे पति की कामना करती हैं। तो तासम नते वही परिपांत पत्यम प्रियम धनायुंसी यतो स्वतंत्रता। लेकिन स्थिति यह है कि वे दूसरे लोग तासम उन स्त्रियों के पुत्र के धन के या और भी उनका जो प्रिय वस्तु है या व्यक्ति हैं या आयु की रक्षा नहीं कर पाते। वे उपपत्ति हैं, क्यों नहीं रक्षा करते हैं? तो कह रहे हैं कि यह तो अस्वतंत्रता अस्वतंत्रता अस्वतंत्रता, क्योंकि अस्वतंत्र है इस संसार में जो पति हैं, तो खुद ही स्वतंत्र नहीं है तो दूसरे की रक्षा क्या करेंगे। श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि काल कर्म गुणाधीनो देहोयम पांच भौतिक कथमन्यत गोपायत सर्पो ग्रस्तो यथा परम। कोई भी व्यक्ति है तो खुद ही काल के अधीन है, कर्म के अधीन है, गुण के अधीन है, तो दूसरे की रक्षा क्या करेगा। उदाहरण दिया गया है कि सर्पग्रस्त यथा परम। मान लीजिए कि कोई मेढक है, मेढक को सर्प अपने मुंह में निगल लेता है। कभी कभी देखा जाता है कि मुंह में निगल गया लेकिन मेढक अभी जीवित है, तुरंत दबाता नहीं है, धीरे धीरे उसको नीचे ले जाता है। तो अब जो मेढक सर्प के मुख में है, अब वह सोचे कि दूसरे मेढक की कुछ सहायता कर दें, वो क्या सहायता करेगा। और ये उक्ति नारद जी के युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र के लिए, विदुर जी के लिए बहुत चिंतित थे, गांधारी के लिए चिंतित थे, क्योंकि ये लोग अर्धरात्रि में बिना युधिष्ठिर महाराज को बतलाए ही घर से निकल गए थे। युधिष्ठिर महाराज का जो नित्य का नियम था उसको पूरा किए, उनका नित्य का नियम था कि स्नान इत्यादि के बाद दान देते थे, तिलगो भूमि रुक्मय। वे क्षत्रिय हैं, राजा हैं, तो उनका रोज का नियम था कि ब्राह्मणों को दान देते थे। वो दान जो देते हो तिलगो भूमि रुक्मय, ये चार चीज जरूर रहता था, इसके साथ दान देते थे, तिल गो भूमि और सोना, इसके साथ दान देते थे। दान दे लिए इसके बाद गृहम प्रविष्ट गुरु वंदनाय, इसके बाद अपने श्रेष्ठ जनों को नमस्कार करने के लिए, वंदना करने के लिए उनके घर में प्रवेश किए। अब वहां धृतराष्ट्र का पता ही नहीं है, गांधारी का पता ही नहीं है, ये तो बहुत विकल हो गए। संजय से पूछे लेकिन उनको भी नहीं पता था। अब युधिष्ठिर महाराज क्या क्या सोच रहे हैं, अब इसको कहने में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन वे बहुत चिंतित थे कि मेरे बिना कैसे धृतराष्ट्र रहेंगे, अंधे हैं। अब नारद जी वहाँ आ गए तो उसको समझाने लगे कि अरे देखो, ये सब भगवान की व्यवस्था है, भगवान की ऐसी सृष्टि है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जीवित रह सकता है। भगवान ऐसी व्यवस्था दिए हैं कि किसी भी जगह पर वे किसी के द्वारा पालन कर लेते हैं। तो अभिमान छोड़ो, ये तो अज्ञान बस व्यक्ति सोचता है कि मैं पालन करने वाला हूँ, तुम क्या पालन करोगे या कोई क्या पालन करेगा। पालन करने वाले तो भगवान हैं, वे जिसे कराते हैं करा लेते हैं। काल कर्म गुणाधीनो देहो यम पंच भौतिक, तुम चिंता कर रहे हो तो इस संसार की स्थिति है कि खुद ही व्यक्ति काल कर्म गुण, काल कर्म गुणाधीन और प्रकृति के गुण के अधीन है, तो दूसरे की क्या रक्षा करेगा। उसकी वही स्थिति है जैसे एक मेढक किसी सर्प के मुख में निगल लिया गया हो और वो चिंता करे कि हम दूसरे की रक्षा करें, दूसरे की क्या रक्षा करेगा। तो इसी आशय को प्रकट कर रही हैं लक्ष्मी देवी कि यत अस्वतंत्रा, वे पति लोग ही स्वतंत्र नहीं हैं, तो अपने आश्रित के धन पुत्र या प्रिय वस्तु की रक्षा क्या करेंगे। और सिद्धांत दे रही हैं, पति की परिभाषा स्थापित कर रही हैं और उस पर लोगों को जांच रही हैं, तो कह रही हैं कि सवई पति स्याद अकुतो भयम स्वयं समन्ततः पाति भयातुरम जन। ये पति शब्द पर विचार कीजिए तो संस्कृत से यही अर्थ होगा पाति इति पति, जो रक्षा करे उसको पति कहा जाएगा। वो जो खुद ही अस्वतंत्र है, किसी के अधीन है, तो दूसरे की क्या रक्षा करेगा। लेकिन अब इस सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो सवई पति सात अकुतो भयम स्वयं, भाई पति तो उसी को कहा जाएगा जिसको किसी प्रकार से कोई भय नहीं हो, और समंततः पाति भयातुरम जनम, और अपने लोगों को जो भय से आतुर हैं, भयभीत हैं, उनको सब तरह से रक्षा कर ले, उसको पति कहा जाएगा। खुद भी निर्भय है, कहीं से कोई भय नहीं है, और अपने आश्रित का सब प्रकार से रक्षा कर ले, तो उसको पति कहा जाएगा। स एक एव इतरथा मिथो भयम नैवात्मा लाभा दधि मन्यते परम। इस परिभाषा को ग्रहण किया जाए पति का, तो कह रहे हैं कि स एक एव, तो अब ऐसा व्यक्ति तो केवल एक है, इस संसार में भगवान के अतिरिक्त कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको कहीं से भय नहीं है और सब प्रकार से अपने आश्रित की रक्षा कर ले। जो पति की परिभाषा है उसके अनुसार स एव, स एक एव, वह तो केवल एक है। भाई क्यों एक है? इतरथा मिथो भय, जो दूसरे लोग हैं तो आपस में ही उनको भय है, एक दूसरे से भय है। तो भाई एक ही क्यों है, दूसरे क्यों नहीं है? तो करें कि नैवात्म लाभाद अधिमन्यते परम, भगवान पति हैं, वे निर्भय हैं, क्योंकि वे अपने लाभ से ही पूर्ण हैं। ये भय क्यों उपस्थित हो जाता है? क्योंकि हमारे अंदर वासना है, कामना है। भयम द्वितीया विनिवेशतः स्यात्, वे भय का कारण तो वासना ही है। तो एक भगवान के अतिरिक्त और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने ही आनंद से पूर्ण हो, संतुष्ट हो। हम लोग तो अविद्या ग्रसित हैं, विविध प्रकार की कामना है, उसके पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, और कर्म करेंगे तो उसका बंधन होगा। तो इस तरह से एक भगवान को छोड़ करके कोई दूसरा पतिवाच्य नहीं है। और अब इस श्लोक में कह रही हैं कि यातस्यते पाद सरोरुहारणम निकामयत साखिल कामलम पटा तदेव राशिप्सित इप्सितोर्चितो यद भग्न यांचा भगवन प्रतप्यते। कि जो स्त्री या तस्य, जो ऐसे आप विलक्षण पति हैं, रक्षक हैं, वैसे आपके पाद सरोरुह अर्हणम, आपके चरणों की सेवा निकामय सब प्रकार से कामना करती है। और सा अखिल काम लंपटा, और उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाती है, सारे भोग को प्राप्त कर जाती है। और इस श्लोक में उन स्त्रियों के महत्व को बतला रहे हैं, या उनके श्रेष्ठता को बतला रहे हैं, जो केवल भगवान के चरणों की सेवा की कामना करती है और कोई कामना नहीं करती है। जिसके मन में सेवा के अतिरिक्त कोई कामना नहीं है तो वह स्त्री श्रेष्ठ है। यातस्यते पाद सरोरुहारणम निकामयेत, निकामयेत सब तरह से, नितरां कामयेत सब तरह से, केवल आपके चरण कमल की सेवा चाह रही है। वो चाह रही है केवल आपके चरण कमल की सेवा, लेकिन उसका फल क्या होगा? सा अखिल कामलम पटा, और उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, सारे भोग उसको प्राप्त हो जाएंगे। और तदेव रात सिप्सित मिप्सितोर्चितो यद भग्न यांचा भगवन प्रतप्यते। और मान लीजिए कि किसी स्त्री के मन में कोई कामना है और वह भगवान की सेवा कर रही है, प्रार्थना कर रही है, तो उसके मनोरथ को भगवान पूर्ण करते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी कह रही हैं कि जो उसके मन में मनोरथ है उसी को पूर्ण करते हैं, और वह भी अस्थाई रूप से नहीं, अस्थाई रूप से। और जब ही उसका भोग समाप्त होता है तो भग्न यांचा भगवान प्रतप्यते, वह दुख में पड़ती है, वो संताप में पड़ जाती है। तो तुलना कर रहे हैं लक्ष्मी जी दो ग्रुप का। एक ग्रुप है जो केवल भगवान के सेवा की अभिलाषा रखता है, वो कह रहे हैं कि उसको सब भोग प्राप्त हो जाता है, सब मनोरथ उसका पूर्ण हो जाता है। और एक ग्रुप है जो कुछ खास इच्छा से भगवान की अर्चना करते हैं, तो उनका भी मनोरथ पूर्ण होता है, लेकिन केवल वही मनोरथ पूर्ण होता है जिसकी इच्छा है। तो अधिक भोग की प्राप्ति किसको हुई? जिसके मन में कोई कामना नहीं है उसको अधिक भोग की प्राप्ति हो जाती है, और जिसके मन में कामना है उसको जो कामना है उसकी प्राप्ति होती है, लेकिन अब उसको बाद में संताप भी मिलता है। जब भोग समाप्त हो जाता है तो उसको संताप प्राप्त होता है। तो इस तरह से इस श्लोक में दो प्रकार के स्त्रियों की तुलना कर रही है, और जो केवल भगवान के चरण की सेवा की अभिलाषा रखती हैं तो उनको श्रेष्ठ बतला रही है। लेकिन ऐसा श्लोक है कि बहुत बहुत प्रश्न खड़ा होगा, खास करके यह सनातन दास हैं, शुभ कृष्ण है, तो इस श्लोक पर कई एक प्रश्न खड़ा कर देंगे। लेकिन थोड़ा विचार करना चाहिए, लक्ष्मी जी अपने स्तर से इस श्लोक को बोल रही हैं। इस श्लोक में वे कह रही हैं कि जो किसी कामना से भगवान की अर्चना करता है या करती है, उसके उस मनोरथ की पूर्ति भगवान कर देते हैं, लेकिन यह सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है। भगवान का ऐसा स्वभाव नहीं है, और श्रील प्रभुपाद जी इस विषय को बहुत स्थापित कर रहे हैं। लेकिन सारांश पहले समझिए कि लाभ इसमें है कि किसी प्रकार की कामना मन में न रखा जाए। उसका क्या लाभ होगा कि भगवान जो आवश्यक समझेंगे सब पूरा करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम किसी चीज की कामना करेंगे तब भगवान उसको पूर्ण करेंगे। भगवान गीता में घोषित किए हैं कि जो हम पर ही आश्रित है, किसी दूसरे का आश्रय नहीं लिया है और मेरा चिंतन कर रहा है, चिंतन करने करते हुए उपासना कर रहा है, तेषां नित्याभिजुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्। जो अनन्य है, अनन्य का अर्थ है कि एक भक्ति को छोड़ करके और भगवान को छोड़ करके किसी दूसरे का आश्रय नहीं है। जो भगवान का चिंतन करते हुए उनके उपासना में लगे हुए हैं, नित्य उपासना में लगे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के योग क्षेमम वहाम्यहम् भगवान घोषित करते हैं कि उसके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं। योग का अर्थ है कि जो भक्त के योग और क्षेम में अंतर किया गया, भक्त के पास जो कुछ है वे उसकी सभी प्रकार से रक्षा करते हैं और उसे जो कुछ चाहिए उसकी पूर्ति करते हैं। जो चीज है उसके पास उसको बचा करके रखते हैं, और जो नहीं है उसको जुटा करके दे देते हैं। तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? लेकिन जो भगवान के चरणों की अर्चना कर रहा है किसी कामना से, तो क्या उसको लाभ नहीं मिलता है? और उसको भी लाभ मिलता है। सिद्धांत यह है, तत्पादुके अविरतम परिजे चरंति ध्यायंत भद्र नसने सुचयो गृणन्ति बिंदन्ति ते कमलनाभ भवाप वर्गम आशा सते यदित आशीष ईस नान्य। महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि आपके चरण जुगल की आराधना जो कर रहे हैं, तत्पाद के अविरतम परिजय चरन्ति ध्यायन्ति अभद्र नसने, भगवान के चरण कमल की विशेष चरण जुगल की विशेषता दे रहे हैं कि सब प्रकार के अमंगल को नष्ट करने वाले हैं। जो व्यक्ति ऐसे चरण जुगल की आराधना करता है, बिंदन्ति ते कमलनाभ भवापवर्गम, वो निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। और आशा सत्य यदि उसके मन में कुछ कामना है तो उसको भी प्राप्त करता है, दूसरे लोग इसको प्राप्त नहीं करते। तो चाहे कामना से भक्ति करें या निष्काम भाव से भक्ति करें, भगवान सबका ध्यान रखते हैं, सबका मंगल होता है। और श्रील प्रभुपाद जी तो लिख रहे हैं कि जो कामना से भी भक्ति कर रहा है तो उसको भी निष्काम ही मानना चाहिए। अरे भाई, कामना से भक्ति कर रहे कैसे निष्काम मानेंगे, एकदम विरोधी लगता है। लेकिन आशय समझना चाहिए कि जो किसी कामना से भी भगवान के पास जाता है तो भगवान अपने भक्ति का रस उसको दे देते हैं, और उस भक्ति के रस से स्वतः ही व्यक्ति वो कामना को भूल जाता है। इससे विषय की चर्चा चैतन्य चरितामृत में की गई है और श्रीमद् भागवतम में भी कई एक जगह है। तो यहाँ अब इस श्लोक के दूसरी तरह से व्याख्या की जाए, और लक्ष्मी जी का आशय यह है कि जो आपके चरण कमल का अर्चना निष्काम भाव से करता है, केवल सेवा की लालसा है, तो उसके सारे मनोरथ को भगवान पूर्ण करते हैं। और जो किसी कामना से किसी अन्य देवता के भजन करता है, तो कभी कभी उस कामना की पूर्ति नहीं होती है और इसलिए उसको संताप उत्पन्न होता है। तो यदि लक्ष्मी जी के वाक्य को ग्रहण करें तो वे अन्य देवता के अर्चना के विषय में कह रही है कि कामना का भग्न यांचा, कामना की पूर्ति नहीं होगी, उसका मनोरथ सफल नहीं होगा तो प्रतप्यते, उसको बहुत कष्ट होगा। और यदि भगवान के लिए सिद्धांत लिया जाए तब यह माना जाएगा कि लक्ष्मी जी अपने स्तर से कह रही हैं। लक्ष्मी जी के मन में भगवान के चरण सेवा के अतिरिक्त कोई कामना नहीं है, तो उन स्त्रियों को वे हे बतला रही हैं अपने स्तर से, जिनके हृदय में कुछ भक्ति के पीछे कामना किसी कामना से कर रही हैं। तो यदि भगवान के साथ इस दूसरे वाक्य को लेंगे तो ये मानना होगा कि अपने स्तर से, अपने तुलना से, अपने स्वभाव बस, अपने मनोभाव को ध्यान में रख करके दूसरे स्त्रियों पर आक्षेप कर रही हैं लक्ष्मी जी। नहीं तो भगवान का स्वभाव यह है कि किसी भी भाव से, निष्काम भाव से, सकाम भाव से जो भगवान के पास जाता है, भगवान उसको अपना चरण कमल प्रदान कर देते हैं। इतना जरूर है कि जो सकाम भाव से भगवान की आराधना करते हैं तो उनको प्रेम प्राप्ति में विलंब होते, तो क्यों विलंब किया जाए। इस विषय पर बहुत बहुत बातें हैं, खास करके जो भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं, रूप गोस्वामी स्थापित किए हैं अन्याभिलाषिता शून्य, भक्ति की परिभाषा आप लोग पढ़ते रहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कामना मन में नहीं है तो हमारे मनोरथ की पूर्ति नहीं होती। भक्ति के विषय में कहा गया है या मोक्षांत चतुर्वर्गा फलदा सुखदा निर्णाम। ये भक्ति, निष्काम भक्ति का यह स्वभाव है कि ऐसी लता है जिसमें चारों पुरुषार्थ फलता है, सुख फलता है। केवल चारों पुरुषार्थ ही नहीं फल जाता है, सुख भी इसमें फल लगता है। तो निष्काम भक्ति करने से स्वतः ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, इसलिए लक्ष्मी जी उन स्त्रियों को है बतला रही है जो किसी कामना से भगवान की आराधना करती हैं। बहुत बहुत सिद्धांत इस विषय में है, बोलने की इच्छा भी है, लेकिन समय समाप्त हो गया, इसलिए हरे कृष्णा।